नमस्ते, आज हम देख रहे हैं अध्याय 9, प्राणियों में जीवन प्रक्रियाएं मतलब लाइफ प्रोसेसेस।
हाँ बिल्कुल।
और खास तौर पे हम न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन, इन दो बहुत जरूरी प्रक्रियाओं को समझने की कोशिश करेंगे।
बिल्कुल, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि यही वो बुनियाद है जिससे पता चलता है कि जीवित प्राणी ऊर्जा कैसे लेते हैं, बढ़ते कैसे हैं और जिंदा कैसे रहते हैं।
सही कहा, इनके बिना तो जीवन मुमकिन ही नहीं है।
बिल्कुल नहीं।
तो चलिए न्यूट्रिशन और डाइजेशन से शुरू करते हैं। मनुष्यों में ये कैसे काम करता है? सफर मुंह से शुरू होता है ना? माउथ से?
जी हाँ, माउथ से। वहाँ दो जरूरी चीजें होती हैं, एक तो दांत जो भोजन को चबाकर छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, ये हुआ मैकेनिकल डाइजेशन।
अच्छा।
और दूसरा लार यानी सलाइवा में एक एंजाइम होता है, सैलिवरी अमाइलेज।
हाँ सुना है।
वो स्टार्च को पचाना शुरू कर देता है, तो केमिकल डाइजेशन की शुरुआत यहीं से हो जाती है।
ओके, तो चबाया, लार मिक्स हुई, फिर खाना नीचे कैसे जाता है? सिर्फ ग्रेविटी से तो नहीं गिरता होगा?
नहीं नहीं वो असोफेगस यानी भोजन नली से एक खास तरीके से नीचे जाता है। एक लहर जैसी गति होती है मांसपेशियों की, उसे पेरिस्टाल्सिस कहते हैं।
अच्छा, पेरिस्टाल्सिस, सुनाया नाम। तो खाना पेट तक पहुंच गया, स्टमक में, वहां क्या होता है? वहां तो काफी कुछ होता है सुना है, एसिड वगैरह।
हाँ, पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl होता है। इसका काम है खाने के साथ आए कीटाणुओं को मारना। और ये एक दूसरे एंजाइम पेप्सिन को काम करने के लिए सही एसिडिक माहौल देता है। पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ना शुरू करता है।
लेकिन एक सवाल, पेट खुद अपने ही एसिड से कैसे बचता है? HCl तो काफी स्ट्रांग होता है।
बहुत अच्छा सवाल है। पेट की जो अंदरूनी दीवार होती है ना, उस पर म्यूकस की एक मोटी परत होती है।
अच्छा।
हाँ, वो परत पेट को उस एसिड से बचाती है। लेकिन पाचन का जो असली काम है, ज्यादातर काम वो पेट में नहीं होता।
कहाँ होता है फिर?
स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत। बिल्कुल, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, पाचन और अब्सॉर्प्शन यानी अवशोषण की मुख्य जगह है। यहीं पर लिवर से आया हुआ बाइल,
बाइल, हाँ
हाँ बाइल फैट्स को छोटे छोटे कणों में तोड़ता है, जिसे एमल्सिफिकेशन कहते हैं। और पैनक्रियास से कई सारे एंजाइम्स आते हैं।
पैनक्रियास से भी? ओके।
हाँ, वो एंजाइम्स फिर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और बचे हुए फैट्स सबको पूरी तरह पचा देते हैं।
और मैंने सुना है छोटी आंत में कुछ उंगलियों जैसी चीजें होती हैं, विली, उनका क्या काम है?
हाँ विली, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये लाखों की संख्या में होती हैं और छोटी आंत की अंदरूनी सतह का क्षेत्रफल मतलब सरफेस एरिया बहुत ज्यादा बढ़ा देती है।
कितना? मैंने कहीं पढ़ा था शायद टेनिस कोर्ट जितना।
हाँ बिल्कुल, लगभग उतना ही। इससे फायदा ये होता है कि पचे हुए पोषक तत्वों को खून में सोखने के लिए बहुत ज्यादा जगह मिल जाती है, अब्सॉर्प्शन बहुत अच्छे से होता है।
कमाल है। अच्छा, तो पोषक तत्व खून में चले गए, अब जो बचा हुआ खाना है उसका क्या होता?
वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत में। बड़ी आंत का मुख्य काम है बचे हुए पानी और कुछ जरूरी लवणों को सोखना।
ठीक है।
और फिर जो ठोस वेस्ट बचता है, मल, वो रेक्टम में जमा होता है और फिर एनस के रास्ते शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को इजेशन कहते हैं।
इजेशन, समझ गया। अच्छा, ये तो हुई इंसानों की बात, पर क्या सभी प्राणियों में पाचन बिल्कुल ऐसा ही होता है? जैसे गाय भैंस को देख लीजिए, वो तो घास खाती हैं, वो कैसे पचाती हैं?
नहीं, सब में एक जैसा नहीं होता। रूमिनेंट्स मतलब जुगाली करने वाले जानवर जैसे गाय भैंस, उनके पेट के हिस्से अलग होते हैं। एक हिस्सा होता है रूमेन।
हाँ, रूमेन।
उसमें खास बैक्टीरिया होते हैं जो सेल्यूलोस को पचा सकते हैं, जो घास में होता है। इंसान सेल्यूलोस नहीं पचा सकते।
अच्छा, और वो जुगाली क्यों करते हैं? वो चबाते रहते हैं हमेशा?
हाँ, वो पहले घास को जल्दी जल्दी निगल लेते हैं, फिर आराम से बैठकर उस अधपचे खाने को वापस मुंह में लाते हैं और उसे अच्छी तरह चबाते हैं। इसी को रूमिनेशन या जुगाली करना कहते हैं।
दिलचस्प। और पक्षियों का क्या? उनके तो दांत नहीं होते, वो कैसे पीसते हैं खाना?
पक्षियों में एक अंग होता है गिजर्ड। वो एक मांसल थैली जैसा होता है जिसमें अक्सर छोटे छोटे कंकड़ भी होते हैं जो पक्षी निगल लेते हैं।
कंकड़? क्यों?
हाँ, वो कंकड़ गिजर्ड की मांसपेशियों के साथ मिलकर भोजन को पीसने में मदद करते हैं। तो ये दिखाता है कि पाचन तंत्र कैसा होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि प्राणी खाता क्या है।
बिल्कुल, जैसा आहार वैसा पाचन तंत्र। चलिए, अब पाचन से पोषक तत्व तो मिल गए, पर इन पोषक तत्वों से शरीर को ऊर्जा कैसे मिलती है? यहाँ रेस्पिरेशन का रोल आता है शायद।
हाँ, यहीं पर रेस्पिरेशन यानी श्वसन की भूमिका है।
लेकिन एक कंफ्यूजन अक्सर होता है, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन कहीं एक ही चीज है?
नहीं, ये बहुत कॉमन गलत फहमी है। ब्रीदिंग, जिसे हम सांस लेना कहते हैं, वो सिर्फ एक फिजिकल प्रोसेस है, हवा को फेफड़ों के अंदर लेना और बाहर छोड़ना।
ठीक है।
जबकि रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है, ये शरीर की हर कोशिका, हर सेल के अंदर होता है। इसमें ग्लूकोस, जो हमें पाचन से मिला, ऑक्सीजन की मदद से टूटता है और एनर्जी रिलीज होती है।
अच्छा, तो ब्रीदिंग बस गैस अंदर बाहर करना है और रेस्पिरेशन उस गैस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके एनर्जी बनाना है। समझ गया। तो मनुष्यों में ये ब्रीदिंग वाला प्रोसेस कैसे होता है?
हवा अंदर कैसे जाती है? हवा नॉस्ट्रिल्स यानी नाक के छेदों से अंदर जाती है। नाक के अंदर बाल और म्यूकस होते हैं जो धूल और गंदगी को रोकते हैं। हवा वहाँ थोड़ी गर्म और नम भी होती है।
हाँ, फिल्टर हो जाती है एक तरह से।
बिल्कुल। फिर ये हवा विंड पाइप यानी श्वास नली से होती हुई लंग्स यानी फेफड़ों तक पहुँचती है।
और लंग्स के अंदर क्या होता है? गैस बदलती कैसे? ऑक्सीजन अंदर, CO2 बाहर।
लंग्स के अंदर विंड पाइप और छोटी नलियों ब्रोंकी में बंट जाती हैं। ये नलियां और पतली होकर लाखों छोटे छोटे गुब्बारों जैसी संरचनाओं में खुलती हैं, जिन्हें एल्वियोली कहते हैं।
एल्वियोलाई।
ओके। ये एल्वियोली बहुत पतली दीवार वाले होते हैं और इनके चारों तरफ खून की नलिकाओं का जाल होता है। यहीं पर गैसों का आदान प्रदान होता है। हवा से ऑक्सीजन खून में चली जाती है और खून से कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर हवा में आ जाती है, जिसे हम बाहर छोड़ देते हैं।
और ये सांस अंदर लेने और बाहर छोड़ने का मैकेनिज्म कैसे काम करता है? मतलब कौन सी मांसपेशियां काम करती हैं?
इसमें मुख्य रूप से दो चीजें हैं। एक तो डायफ्राम, जो फेफड़ों के नीचे एक बड़ी मांसपेशी है।
हाँ, डायफ्राम।
और दूसरी पसलियों के बीच की मांसपेशियां। जब हम सांस अंदर लेते हैं यानी इनहेलेशन, तो डायफ्राम नीचे जाता है और पसलियां ऊपर और बाहर की तरफ उठती हैं। इससे छाती के अंदर की जगह बढ़ जाती है और हवा अंदर खिंचाती है।
और सांस छोड़ते समय एक्सहेलेशन,
तब उल्टा होता है। डायफ्राम ऊपर आता है, पसलियां नीचे जाती हैं, छाती की जगह कम होती है और हवा बाहर निकल जाती है।
ठीक है। जैसे पाचन में अलग अलग प्राणियों में तरीके अलग थे, क्या रेस्पिरेशन में भी ऐसा है?
हाँ, बिल्कुल है। ये प्राणी के रहने की जगह और उसकी जरूरतों पर निर्भर करता है। जैसे मछलियाँ पानी में रहती हैं, तो वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन लेती हैं।
कैसे?
अपने गिल्स यानी गलफड़ों की मदद से। गिल्स में बहुत महीन खून की नलिकाएं होती हैं, जो पानी से ऑक्सीजन सोख लेती हैं।
अच्छा, और केंचुए वगैरह, उनमें तो फेफड़े नहीं होते?
केंचुए अपनी नम त्वचा, मॉइस्ट स्किन से ही गैसों का आदान प्रदान कर लेते हैं। अच्छा। उनकी त्वचा पतली और नम होती है और उसके ठीक नीचे खून की नलिकाएं होती हैं।
और कीड़े मकोड़े,
इंसेक्ट्स,
उनमें एक अलग ही सिस्टम होता है, ट्रेकियल सिस्टम।
ओके।
उनके शरीर पर छोटे छोटे छेद होते हैं, स्पिरिकल्स।
स्पिरिकल्स, हाँ, उनसे हवा अंदर जाती है और पतली पतली नलियों, ट्रेकिए के जाल के जरिए सीधे शरीर की कोशिकाओं तक पहुंच जाती है। खून का इस्तेमाल गैस ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं होता उनमें।
वाह, मतलब कितने अलग अलग तरीके हैं सांस लेने के। अद्भुत है ये विविधता।
बिल्कुल, ये सब एवोल्यूशन और एडेप्टेशन का कमाल है।
तो अगर हम संक्षेप में कहें तो डाइजेशन ने भोजन को तोड़ा, पोषक तत्व निकाले, और रेस्पिरेशन ने उन पोषक तत्वों से ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके ऊर्जा निकाली।
एकदम सही। ये दोनों प्रक्रियाएं जीवन को चलाने के लिए बेहद जरूरी है और एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं।
हाँ, ये जुड़ाव वाकई सोचने लायक है। मतलब एक के बिना दूसरा अधूरा है।
बिल्कुल। और यही एक सवाल मन में आता है, ये दोनों सिस्टम, पाचन और श्वसन, एक दूसरे पर आखिर कितने निर्भर है? जरा सोचिए, अगर किसी को सही पोषण न मिले तो क्या रेस्पिरेशन से पर्याप्त ऊर्जा बन पाएगी? शायद नहीं।
हाँ, सही बात है।
या फिर अगर हम लगातार प्रदूषित हवा में सांस लें, तो भले ही पाचन ठीक हो, क्या कोशिकाओं को ऊर्जा बनाने के लिए जरूरी साफ ऑक्सीजन मिल पाएगी? और इसका पूरे शरीर पर क्या असर पड़ेगा?
ये दिखाता है कि हमारा शरीर कितनी जटिल और आपस में जुड़ी हुई मशीन है। एक जगह जरा सी गड़बड़ी पूरे सिस्टम को प्रभावित कर सकती है।
बिल्कुल, ये जीवन प्रक्रियाओं की जटिलता और उनके आपसी तालमेल को उजागर करता है।